समर्थ और त्रिशा के जाते ही जानवी अपनी केयर से उठी और उन बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर बोली, मैंने आप लोगों के लिए भी खाना बनाया है, मैं लगा देती हूँ, आप भी डिनर कर लो। इतना बोलकर जानवी तेज कदमों से किचन में गई और लगभग 5 मिनट में ही उसने डाइनिंग टेबल को फिर से खाने से सजा दिया था। वहीं अमर की नज़रें तो जानवी की प्लेट पर थीं। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब भी उसने खाना नहीं खाया। अमर ने गहरी सांस लेकर पल भर के लिए अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों में तेज जलन हो रही थी, जैसे वे आंखें भी अब रोना चाहती हों। वो तेज कदमों से सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद जानवी ने भी एक चैन की सांस ली। वहीं उन बॉडीगार्ड्स ने भी खुश होते हुए खाना खाया, जिसके बाद जानवी ने सारे बर्तन साफ किए। ये सब काम करते करते उसे रात के 10 बज चुके थे। वो अपनी साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में जा रही थी। रास्ते में ही अमर का कमरा था, जिसकी लाइट ऑन थी। जानवी का मन कर रहा था कि एक बार अमर को देख ले, पर उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो धीमे कदमों से अपने कमरे में चली गई। वहीं अंदर कमरे में अमर बालकनी में बैठा था। उसके हाथों में सिगरेट थी, जिसके लंबे लंबे कश भरते हुए वो एकटक अपने हाथों में बंधी पट्टी को देख रहा था, जो अब लाल हो चुकी थी। शायद उसकी चोट से खून बह रहा था, उसके बहुत जोर से मुट्ठी भींचने की वजह से। पता नहीं अमर को कब नींद आई, पर उसकी आंखें सीधे सुबह 5 बजे खुली। उसकी बालकनी पर एक चिड़िया बहुत तेजी से शोर मचा रही थी। अमर ने आंखें खोलकर देखा तो वो सोफे पर उसी तरह बैठा था और उसे बैठे बैठे ही नींद आ गई थी। वो जल्दी से उठकर अंदर आया और फिर फ्रेश होकर नीचे गया। उसने देखा कि अब तक जानवी उठी नहीं थी। इतना थकने के बाद देर तक सोना लाजमी था। अमर सोफे पर बैठा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि दीक्षांत उसे कल से बहुत बार फ़ोन कर चुका था। उसने गहरी सांस लेते हुए फ़ोन उठाया तो सामने से दीक्षांत ने गुस्से में कहा, तूने ऑफिस आना क्यों छोड़ दिया है? माना तेरे और भाभी के बीच कुछ ठीक नहीं है और ये तेरा पर्सनल मैटर है। मैं इसके बारे में पूछकर तुझे परेशान भी नहीं करूंगा, पर तू कम से कम ऑफिस तो आया कर। पूरा दिन उस फार्म हाउस में तेरा दम नहीं घुटता है क्या, भाभी को परेशान होते देखकर? अमर खामोशी से दीक्षांत की हर डांट सुनता रहा, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ था नहीं। हाँ, वो नहीं सह पा रहा था जानवी का परेशान होना, उसका पूरा दिन भूखा रहना। और उसने कोशिश भी की थी जानवी को छोड़कर जाने की, पर उसमें भी वो नाकामयाब हो गया। वहीं दूसरी तरफ शेखर हवेली के गार्डन एरिया में एक बेंच पर हाथ में चाय का कप लिए अद्वैत बैठा था। उसके सामने दो चेयर रखी हुई थीं, जिन पर जसवंत कुकरेजा और संयम सिंघानिया बैठे थे। संयम के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, जिन्हें देखकर अद्वैत ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैंने तो नॉर्मली अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। सुना है बहुत बड़ा नाम है आप लोगों का। संयम ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, भाई आपसे बड़ा नाम किसका है, हम तो बस छोटे मोटे लोग हैं। ये सुनकर अद्वैत ने शैतानों की तरह हंसते हुए कहा, चलो कम से कम तुम दोनों को ये घमंड तो नहीं है कि तुम बहुत बड़े आदमी हो। अब मुद्दे की बात पर आता हूँ, अमर रावत से क्या दुश्मनी है तुम दोनों की? तुम दोनों ने उसके छोटे भाई की इज्जत को उछालने की कोशिश की, उसके हाथों से एक अपराध करवा दिया, उसके बाद अब अमर रावत की पत्नी के पीछे पड़े हो। आखिर मसला क्या है तुम दोनों का? अद्वैत की बातें सुनकर संयम जहां डर रहा था, वहीं जसवंत के दिमाग में अलग खिचड़ी पक रही थी। जसवंत ने अपने हाथ में पकड़ा चाय का कप नीचे रखते हुए कहा, अद्वैत भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारी अमर रावत से दुश्मनी क्या है? दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त ही नजर आता है, और हम दोनों भी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। अच्छा हुआ आपने सामने से हमें बुला लिया, वरना हम दोनों सोच ही रहे थे आपसे मिलने की अपॉइंटमेंट लेने की। अद्वैत ने चाय का कप नीचे रखा और अपने दोनों हाथ मसलते हुए कहा, सॉरी ब्रो, पर अद्वैत शेखर चलते फिरते लोगों से ना दोस्ती करता है ना दुश्मनी। संयम ने घबराकर जसवंत का हाथ पकड़ा और फिर अद्वैत की तरफ देखते हुए बोला, आपको हमसे क्या काम है? आप बस हमें वो बताइए, हमें भी आपसे ना दुश्मनी चाहिए ना दोस्ती। अद्वैत ने अपने पजामे की पॉकेट से एक गन निकालते हुए उस पर अपनी उंगलियां फिराकर कहा, तुम दोनों ने कुछ दिन पहले अमर के फार्म हाउस पर कुछ गुंडे भेजे थे उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने के लिए। मुझे उसका हिसाब चुकता करना था। एक्चुअली वो मेरी महबूबा है, उसकी तरफ कोई गंदी नजरों से देखे तो भी मैं उसकी आंखें नोच लेता हूँ, और तुम्हारे आदमियों ने तो उसे छूने की कोशिश की है। संयम को जिस बात का डर था वही हो रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने जल्दी से हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि आप उस लड़की को इतना पसंद करते हैं। संयम आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और वहां एक गोली चलने की आवाज आई, जो गोली सीधा संयम के पैर पर लगी थी। अद्वैत ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे एक आम लड़की बोलने की? तुम्हारे मुंह से उसके लिए हमेशा मैम शब्द निकलना चाहिए, समझ गए? संयम ने घबराकर हामी में सिर हिलाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वहीं जसवंत भी अब खौफ भरी नजरों से अद्वैत की तरफ देख रहा था, कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं है।